जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज
Oh, बताई, युद्ध के पहले बताई, बीच में बताई, या शो कर रहा है। धृतराष्ट्र कहता है संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युधिष्ठिर वामका पांडवाश्चैव किं अपूर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां युद्ध के युद्ध कामना से एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने क्या किया? उन्होंने ऐसे नहीं पूछा क्या कर रहे हैं। अपूर्वत ये जो रूप है ये भूतकाल वाचक है, माने उन्होंने कुछ तो कर दिया और अभी पूछ रहा है। वैसे ही भगवत गीता में संजय जब आखिरी बार श्लोक कहते हैं तो उसमें से उनका 18वें अध्याय में 74वां श्लोक है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये अश्रौषम जो रूप है वो भी भूतकाल वाचक है, माने पहले धृतराष्ट्र ने भी जब पूछा तो भूतकाल वाचक शब्द से ही पूछा कि उन्होंने क्या किया, और संजय भी बता रहा है कि मैंने ये सुना, मैं सुन रहा हूं अभी वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के जो डायलॉग है वो सिर्फ वर्तमान काल में है। तो जब कौरवों के सेनापति कौन थे, कौरवों के कितने सेनापति हुए युद्ध में मालूम है किसी को? नाम बता सकते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, बोलिए। गुरु नहीं, कृपाचार्य नहीं थे, द्रोणाचार्य थे। सबसे पहले कौन थे? भीष्म पितामह थे। कितने दिन थे? 10 दिन। कितना दिन युद्ध चला? 18 दिन। 10 दिन भीष्म पितामह, आगे द्रोणाचार्य कितने दिन थे? 5 दिन। उसके बाद कौन थे? कर्ण कितने दिन थे? 2 दिन। सबसे लास्ट कौन थे? नहीं, एक्चुअली माधवी का भाई माने शैल्य मार दिए थे, और वो एक ही दिन, और जब वो मारे गए थे युद्ध खत्म हो गया। तो जब 10वें दिन जब सूचना मिली धृतराष्ट्र को कि हमारे जो सबसे अग्रणी योद्धा है भीष्म पितामह वो अभी शरशय्या में लेटे हुए थे, तो बहुत उत्सुक हुए क्या हुआ वो जानने के लिए। और वो वार्ता लेके संजय आया कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर। तो ये जो भगवद गीता है ये भीष्म पर्व में बताई गई है, जो भीष्म ने क्या क्या किया वो बताते हैं संजय। तो तब धृतराष्ट्र गीता सुनने के, ये श्लोक के पहला जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि ये जो मेरे दुर्बुद्धि पुत्र के ही पुत्र जो दुर्योधन था उसी के वजह से हमारे जो पितामह है उनको शरशय्या पे लेटना पड़ा है। तो इसलिए वो उद्विग्न होकर पूछते कि उन्होंने क्या क्या किया। तो 10वें दिन जब वापिस आए संजय कुरुक्षेत्र से, तो ये उन्होंने जो कथानक है वो बताया, जो भीष्म पर्व में 25 से लेके 42वें अध्याय तक 18 अध्याय है महाभारत में, गीता महाभारत में है मालूम है सबको। तो ये अध्याय में, लेकिन संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी वो कैसी दृष्टि थी कि संजय पूरा याद कर सका, और वो क्या युद्धभूमि में नहीं था, जब भी वो सुन रहा था तब भी वो युद्ध के बाहर ही बैठा था, वो युद्ध में नहीं था। और एक उनको एक आशीर्वाद था कि जो संवाद चल रहा है उसके साथ जो भावना ऊपर नीचे होती थी, अर्जुन के मन में आई हुई उद्विग्नता, या द्रोणाचार्य जब हर्षित हो गए, या भीष्म पितामह ने शंख बजाते समय उनको क्या हुआ, सब पांडवों ने शंख बजाया तो जो धाकराष्ट्र माने कौरवों के हृदय की स्थिति क्या हुई, वो सब भावनाएं भी वो एक्सप्लेन कर पा रहा था, उसको वो संवेदना थी। ये दिव्य दृष्टि वेदर व्यास की कृपा से उनको मिली हुई थी। तो ये कहां बताया गया है, गीता कहां बताई गई है, कुरुक्षेत्र में बताई। वहां क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। चल रहा है कि नहीं, युद्ध नहीं कर रहे थे, छोटी मोटी तो लड़ाई चल ही रही है, बाह्यकारी है या अंतर्मन में है, लेकिन लड़ाई तो जारी है। तो युद्ध के समय बताया हुआ ज्ञान दूसरे युद्ध में काम आ सकता है। समझो शांति से बैठे हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है या कुछ होम चल रहा है, होम के बाजू में सब ऋषि मुनि सन्यासी गण बैठे हुए हैं और वो कुछ चर्चा कर रहे हैं, शायद हमारे जीवन में एप्लीकेबल हो ना हो, लेकिन एक गृहस्थ को बताया गया है भगवत गीता और हम भी गृहस्थ है तो एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये भगवत गीता कहां की क्या परिस्थिति थी वो हमने चर्चा की, कितने वक्ता है उसमें, कितने लोगों के श्लोक आए हैं भगवत गीता में, चार लोगों के। कौन कौन चार मालूम, भगवान श्री कृष्ण है इसलिए तो भगवत गीता कहते हैं, अर्जुन है, संजय है और धृतराष्ट्र। सबसे ज्यादा श्लोक किसने बोले, श्री कृष्ण ने बोले, इसलिए उसका नाम क्या है, भगवत गीता, भगवान का गीत। तो धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है, संजय ने 48 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 76 श्लोक बोले हैं और बचे हुए 575 श्लोक भगवान ने बोले हैं। तो ये 18 अध्याय में डिवाइड किया गया है। किसी को 18 अध्याय के नाम आते हैं, सामूहिक ट्रायल भी करना चाहता जो याद आए हो। पहले अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विशाल योग, दूसरे का सांख्य योग गीता का सार, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास, किसने बोला, बराबर। पांचवा क्या, वहां तक ही आए हैं ठीक है। पांचवा कर्म संन्यास योग, छठवा आत्मसंयम योग, बाद में ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुरु योग, दसवां विभूति योग, ग्यारहवा आना चाहिए विश्वरूप दर्शन योग, बारहवा भक्ति योग, तेरहवा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, चौदहवा गुणत्रय विभाग योग, पंद्रहवा पुरुषोत्तम योग। किसको याद है पुरुषोत्तम योग, सबको आ रहा है, हाँ आ रहा है, पूरा है। 16 दैवी असुरी संपत्ति योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और बाद में सबसे आखिरी मोक्ष संन्यास योग। ये नाम क्यों दिए गए इस अध्याय को कोई बता सकता है, क्या है, ऐसे क्यों नाम दिए गए। ये नाम ही इस अध्याय में जो कुछ भी चर्चा हुई है अर्जुन और भगवान में उसके सूचक है। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये सारे रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं, इनको मार के मुझे, मैं जीत भी गया तो भी उसका क्या फायदा, और सिर्फ मेरा स्वार्थ, मेरे स्वार्थ के लिए मेरा और मेरे भाइयों का झगड़ा है और लोग कितने मर रहे, लाखों मर रहे, तो ये भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे वजह से निष्पाप लोग मर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन विषाद योग इसको कहा गया है। तो भगवत गीता क्या है, कोई बता सकता है भगवत गीता क्या है, हाथों पर करके बताइए, भगवान की वाणी, और बोलिए प्रभु,
भगवान के सिद्धांत के सूत्र,
और क्या है, बोलिए प्रभु,
वेदों में ज्ञान दिया है उसका
ओके वेदों का सार और अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर और भगवद गीता क्या है ये हर एक अध्याय के आखिरी में बताया जाता है। हर एक अध्याय खत्म होने के बाद क्या कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोध्याय। तो भगवद गीता क्या है, तो हम इस श्लोक के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो ओम क्या है, भगवान कहते हैं कि सारे अक्षरों में सारे स्वरों में या सारा जो शब्द है ब्रह्मांड में उसमें मैं ओम हूं। सर्वधर्म शास्त्र में जो प्रणव है वो मैं हूं, जिसको ओंकार कहते हैं, प्रणव सर्व वेदेशु, ऐसे भगवान विभूति योग में खुद को कहते हैं। तत्सत इति का मतलब क्या है, क्या वही माने कौन, तत्सत इति ये जो तीन अक्षर है तीन शब्द है, तो 17वें अध्याय में इसके बारे में भगवान तीन या चार श्लोकों में चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक कार्य होते थे वो तत्सत इति ऐसे करके उसका अंत होता था। इसका मतलब जो प्रभु जी ने कहा वो बराबर है कि वही सत्य है, माने वही यानी क्या, यही जो मुझे आंखों से दिख रहा है और वही जो मुझे आंखों से नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे देह में आत्मा सत्य है, सारे ब्रह्मांड में परमात्मा सत्य है और अंततो गत्वा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सत्य है, तो वो तत्सत इति। इसीलिए कौन सा भी हवन करते हैं या कोई योगी क्रिया करते हैं तो इसमें जब आध्यात्मिक मूल्य जिसका होता है उसमें है ओम तत्सत इति ये आता है। आगे श्रीमद् भगवद गीतासु, हमने कहा ये भगवान ने गाया हुआ गीत है, इसका एक श्लोक समझते समझते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन भगवान ने तो गीत गाया है। तो गीत ये संस्कृत में नपुसक लिंगी है तो गीतम कहते हैं, लेकिन यहां भगवद गीता ये स्त्रीलिंगी रूप इस्तेमाल किया है। तो ऐसे क्यों किया है कि भगवान ने जो गाया हुआ गीत है वो भी एक पर्सन है, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है उसका, और वो करुणा है उसमें, जो स्त्रियों में माताओं में जो स्वभाव रहता है वैसा स्वभाव है उसका, इसलिए उसको कहा है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीतम नहीं कहा है। तो इसलिए हम भगवद गीता को माँ जैसा सम्मान दे सकते हैं और भगवद गीता भी हमें माँ जैसा ही प्यार करती है और हमें सलाह देती है जब हमें जरूरत पड़ती है। उपनिषत्सु, उपनिषत्सु का मतलब क्या है, तो उपनिषद ये वैदिक ज्ञान देने की एक पद्धति है। उप माने बाजू में, निषद माने बैठना, जैसे हम संस्कृत में उपविश्य माने नीचे बैठो, तो उपनिषद माने आजू बाजू में बैठ के। हम कभी भी किसी गुरुकुल का किसी ने पेंटिंग किया हुआ देखेंगे या अभी भगवान और अर्जुन का भी संवाद देखेंगे तो एक दूसरे के बाजू में बैठकर आंखों में आंख डालकर, लैपटॉप या माइक वगैरह की जरूरत नहीं रहती थी तब, और सामने का जो सामने वाले के भाव देख के उसको समझ में आया है वहां तक बताना, ये सिस्टम थी वैदिक ज्ञान आगे जाने की और जिसको उपनिषद कहते थे। और ऐसे जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान 108 उपनिषदों में डिवाइड भी किया गया, इसको उपनिषद कहते हैं। तो भगवद गीता ये एक स्पेशल उपनिषद है, इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं, माने 108 में से एक तो है ही, लेकिन भगवद गीता का जो गीता महात्म्य जो है, जो भगवान श्री शंकर उन्होंने बताया है, तो उन्होंने उस श्लोक में कहा है कि सर्वोपनिषदों का वो, माने सारे उपनिषद गैया के समान है, दूधा गोपाल नंदनम, और उसका दूध कौन निकाल रहा है? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल नंदन दूध निकाल रहे हैं। लेकिन दूध ऐसा होता है क्या कि हमें मन में आया हमने दूध निकाला जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या जरूरी है? उसको बछड़ा होना जरूरी है, और वो बछड़े को देख के ही वो दूध देती है गाय। तो वो बछड़े की भूमिका किसने बजाई है? पार्थो, पार्थ जो है उन्होंने बछड़े की भूमिका निभाई है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये गीतामृत जो है वो सारे उपनिषदों का निचोड़ है, इसीलिए हमें 108 उपनिषद पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो दूध उबाला गया है, उसका अभी गाढ़ा बर्फी करके हमको दिया है, सिर्फ 700 श्लोक। लेकिन जब गाढ़ा हो जाता है कोई चीज तो डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो भगवद गीता भी वैसे है, एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के जो समझ में आती है वो शायद 5-6 बार और थोड़ा उसका ज्यादा मीनिंग समझ में आता है। तो ये हुआ उपनिषद। उपनिषद पद्धति का और एक कैरेक्टरिस्टिक था, या एक उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि सामने वाले को जिज्ञासा नहीं होती तो ज्ञान दिया नहीं जाता है। जैसे भगवद गीता में भी आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय में 10वें श्लोक तक भगवान ने कुछ भी अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। जब अर्जुन ने पूछा कि हे अभी भगवान, अभी मैं आपका शिष्य बन गया हूं, मुझे अभी कुछ बताओ, तो भगवान ने बताया। भगवान ने दूसरे अध्याय को गीता का सार क्यों बताया है? क्योंकि अर्जुन ने बताया हुए पूछे हुए पांचों सवाल का जवाब भगवान ने उधर दे दिया था। अभी तीसरे अध्याय में अर्जुन ने सवाल नहीं पूछते तो भगवद गीता को अध्याय की हो जाती थी। तो जब अर्जुन ने सवाल पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया। रुक अर्जुन, मुझे ये भी मालूम है, रुक अर्जुन, मुझे वो भी मालूम है। ये सिस्टम वेद काल में नहीं थी, इसलिए हमेशा लोग हमेशा हमारे हम सोचते हैं कि पुराने जमाने में इतने बड़े बड़े वेद रहते थे, इतना गीता वगैरह सब कंठस्थ कैसे हो जाता था लोगों के, क्योंकि वो उनको सवाल आया हुआ है जिंदगी में और उसका वो जवाब पा रहे हैं। कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में भी होता है कि हमने पूछ, मेरे जीवन में एक सवाल आया है और इसका किसी को मुझे जवाब दो, ऐसे करके हम किसी के पास जाएंगे और उसने जवाब दिया तो हमारे हमें याद रहेगा। लेकिन हमें जिंदगी में कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल है कि प्रवचन होने के बाद प्रसाद मिलेगा कि नहीं, और कोई प्रवचन देता जा रहा है तो वो ध्यान में नहीं आएगा। तो इसीलिए उपनिषद पद्धति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि श्रोताओं की जिज्ञासा जहां तक होती थी वहां तक ही वक्ता बोलता था, और इसीलिए वो जो ग्रुप रहता था वो 7-8 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे, क्योंकि आंखों में आग डाल के हर एक दूसरे को देख सकता था। तो जो भाव है, वक्ता के भाव, श्रोता के भाव, वो भी एक दूसरे को ज्ञान देते थे। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि हम जब कोई बात करते हैं तो हमारे शब्द है सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन देते हैं। जो हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं उसमें से 10% सिर्फ हमारे शब्द देते हैं। हम जो बताने का हमारा जो टोन है, कोई सिंसियरली कह रहा है, कोई करुणावश कह रहा है, कोई गुस्से से कह रहा है, वो जो टोन है वो बाकी 40% उसका जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट वो टोन से होता है। तो 10 और 40 और 50% जो है वो बॉडी लैंग्वेज से होता है। इसीलिए कौन सा भी भौतिक डील भी साइन होना हो तो इतने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट होने के बाद भी टेबल के सामने आमने सामने बैठ के साइन होता है, क्योंकि फोन में हम हमारे दूसरे को फंसा सकते हैं, गलत बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैं आपको कर दूंगा वगैरह, लेकिन जब सामने आता है तो झूठ बोल रहा है, उसके चेहरे में पता चलता है कि झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए उपनिषद पद्धति में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दिया जाता था। यह हुआ उपनिषद। दूसरा है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या है? कोई बता सकता है ब्रह्म विद्या क्या है? सर्वात्मक परमात्मा का ज्ञान, यानी क्या? यानी ब्रह्म विद्या। ओके, ऐसा लगता है। तो ब्रह्म विद्या इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो तीन स्थितियों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, एक तो बाह्यकारी जो है जिसको जड़ या स्थूल स्थिति में हमारा जीवन है, जैसे मेरे हाथ पैर है तो मेरे हाथ को समझो मैंने अग्नि को पकड़ा तो मेरा हाथ जलने वाला है, ये स्थूल विद्या है। दूसरी है मनोविज्ञान, मैं मन के लेवल पे भी जी रहा हूं, जैसे कि उसने मेरे तरफ देखा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि इसके तरफ देखना है, लेकिन मेरे मन के लेवल पे बैठा हुआ है वो, मेरे बिना मुझे देख ही चला गया। और दूसरा ये क्या, कितने देर से मेरे को घूर घूर के देख रहा है वो, तो ये मन के स्तर पे है हमारा गड़बड़ चल रहा है, कि शरीर के स्तर पे तो कुछ नहीं है, उसने कुछ डांटा नहीं, फटकारा नहीं, सिर्फ देखा, देखा नहीं तो भी गड़बड़, देखा तो भी गड़बड़। और तीसरा है हम आत्मिक स्तर पे जीते हैं। तो तीनों स्तरों के बारे में चर्चा भगवद गीता में कही की गई है, उसको कहते हैं जड़ विज्ञान, मनोविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। तो ब्रह्म विज्ञान, और इसमें भगवद गीता ही ऐसा उपनिषद है जिसमें तत्व भी दिए गए हैं और व्यवहार भी दिया गया है। तत्व क्या दिया है, जैसे कर्म सिद्धांत दिया हुआ है, ये तत्व है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। दूसरा आत्मा का ज्ञान दिया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है, उसमें सिर्फ हमने ज्ञान ग्रहण किया, हमको समझा, लेकिन आगे क्या करना? तो एग्जीक्यूशन लेवल पे भगवान ने क्या कहा है, मन नियंत्रित कैसा करना चाहिए, ये भगवान ने दिया है। सत्व रजत तमो गुण, इसका इसके बारे में चर्चा की है, प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा की है। तो ये सब जो है व्यवहार और तत्व दोनों रूपों में ब्रह्म विज्ञान हमें भगवद गीता में मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म विज्ञायाम। उसके आगे क्या है, योग शास्त्र। योग शास्त्र क्या है कोई बता सकता है? और मैं व्याख्या नहीं पूछ रहा हूं, हमारे वेदों में व्याख्या नहीं थी, हमारे वेदों में स्पष्टीकरण था, कोई भी चीज की व्याख्या नहीं की गई है वेदों में, क्योंकि वेदों में रिस्पेक्ट है कि मुझे जो समझाए वो सामने वाले को समझना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक का पात्र अलग अलग है, इसलिए स्पष्टीकरण था, विश्लेषण था। व्याख्या पाश्चिमात्य है, मिनिमम वर्ड्स में उसका मीनिंग बताओ, अरे लेकिन समझना भी चाहिए ना, तो ये पाश्चिमात्य है। तो योग शास्त्र ये नाम से क्या समझ में आता है? हाँ हाँ, योग इसको कहते हैं, ये युज धातु से आता है संस्कृत, और युज माने जोड़ना। तो आत्मा और परमात्मा को एक दूसरे से जोड़ना, इसके जो अलग अलग मार्ग है वो सारे मार्गों की चर्चा भगवद गीता में की गई है। कौन कौन से मार्ग है कोई बता सकता है? विशेष करके चार मार्ग बताए, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मुझे एक सवाल है, सिर्फ इसमें से कोई एक योग कर सकता है क्या कि नहीं? मैं सिर्फ ध्यान योग करूंगा, मैं सिर्फ ज्ञान योग करूंगा, मैं सिर्फ भक्ति योग करूंगा, ऐसे हो सकता है क्या? तो ये एक दूसरे पे आश्रित है, और वो जो व्यक्ति है जो वो योगों में स्थित है तो वो प्रोमिनेंटली कौन सा योग कर रहा है उसके हिसाब से उसका वो ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अच्छा संकीर्तन करना हो तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? संकीर्तन करने वाले है तो ही संकीर्तन होगा। सबसे पहले संगीत का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान योग। बाद में सिर्फ ज्ञान होके मालूम नहीं होना चाहिए, किसी ने मृदंग बजाना चाहिए, किसी ने करतार बजाना चाहिए, किसी ने गाना चाहिए, तो कर्म का होना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से करना चाहिए। मेरा ही आवाज ऊपर होना चाहिए या मेरा ही करतार का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, बाकी सबने सिर्फ मेरा ही सुनना चाहिए। ये सकाम कर्म करके नहीं होगा सब कीर्तन अच्छा, निष्काम कर्म योग। मैं बजा रहा हूं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और दूसरा मेरे साथ बजा रहा है मैं उसके साथ बजा रहा हूं कि नहीं ये भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं होगा कि। और मेरे अहंकार का सारा जो संकीर्तन का जो माहौल है उसके लिए मेरा अहंकार छोड़ के सब लोगों के साथ एकत्रित आके मुझे वो कीर्तन करना है, भक्ति होगा। एक संकीर्तन में भी चारों लोग हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद होके भगवत गीता में किसी एक योग बहुत महान है और कौन सा एक योग बहुत ही तुच्छ है ऐसे कहा नहीं है, लेकिन अंतर्गतवा भगवान ने कहा कि भक्ति योग सबसे आसान और सबसे अच्छा क्यों है कि मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है, मुझे अभी करता भी अच्छी तरह से बजाने नहीं आता, और फिर भी मेरी बहुत इच्छा है कि संकीर्तन अच्छा हो, और इसलिए मैं लोगों को बुला बुला के एकत्रित करके मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक अच्छा संकीर्तन हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि संकीर्तन अच्छा होगा, क्योंकि धीरे धीरे बाकी सब आएगा उसके नीचे। लेकिन मेरा अहंकार इतना बड़ा है कि कुछ भी हो लेकिन मेरा ही आवाज सुनते आना चाहिए, फिर बाकी सब जाने दो, तो सब कुछ होते हुए भी वो अच्छा कीर्तन नहीं कर पाएगा। और यही जो चीज है वो ये योग में भी है, इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति योग जो है वो कलयुग के लिए सबसे आसान सबसे श्रेष्ठ विधि है। लेकिन बाकी सब योग अभी कुछ काम के नहीं है और ये बहुत घटिया है, और कोई वो कर रहा है तो वो तुच्छ त्यज्य है, ऐसे भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा है कि वो भी आदरणीय ही है। तो ये होगा योग शास्त्र। जैसे ये चार पद्धतियां क्यों दी है, तो सृष्टि के उगम से ही, जब भगवान ने सृष्टि की निर्मिति की तो उगम से ही उन्होंने, उनको विविधता बहुत पसंद है, क्योंकि सृष्टि के पहले वो अकेले थे तो उसमें विविधता नहीं थी, तो बोले अभी विविधता होनी चाहिए, तो रंग भी एक नहीं बनाया सिर्फ लाल, बहुत सारे रंग बनाए, बहुत सारे अलग अलग आकार के फूल बनाए, इतना तक कि दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते, दो फूल भी एक जैसे नहीं होते। और ये डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है, इतनी विविधता क्यों है, एक ही जगत में रहने वाले दो प्राणी, दो पक्षी, दो पेड़ अलग कैसे हैं, एक ही डाली में उगने वाले दो फूल, क्योंकि दोनों का यूटिलिटी तो सेम है। डार्विन का जो सिद्धांत था वो यूटिलिटेरियन था, कि उनको वो खाने के लिए गर्दन लंबी करनी पड़ी इसलिए जिराफ हो गए, लेकिन कुछ लोग जिराफ हो गए लेकिन नीचे जेब्रा और ये भी थे घोड़े, और वो वैसे के वैसे रहे और जिंदा भी रहे। तो जब हम कहते हैं कि सिर्फ मैं कर रहा हूं वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ बाकी मार्ग से जा रहे हैं वो मेरे से कनिष्ठ, दुर्भागी या अभक्त है, तो वो ये डार्विन का सिद्धांत फॉलो करने वाला है, या वो भगवान को विविध, भगवान की विविधता को चैलेंज देने वाला है। और यही चीज हमारे वैदिक सनातन धर्म छोड़ के जो बाकी दो धर्म है जिनका उगम हमारे देश में नहीं हुआ वो कहते हैं, मैं कहता हूं वही सही है, बाकी सब नरक में जाने वाले हैं, नरक में भी लेंगे तो जाएंगे, नहीं तो वहीं भी नहीं जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो हमारी वैदिक सभ्यता ये भगवद गीता के आधार पर बनी हुई है। कृष्ण अर्जुन संवाद, इसका मतलब क्या है? अरे तो सबसे आसान वर्ड है, ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। लेकिन इस संवाद, और हम जब घर में संवाद करते हैं बच्चे से, माँ से, बीबी से या बॉस से, उसमें क्या फर्क है? लेकिन संवाद हुआ तब तो अर्जुन के मन में ये तो मेरा मित्र, मेरा बड़ा हमारा बड़ा रिश्तेदार है, ऐसा ही भावना थी। तो ये संवाद जो है वो संवाद में जो बोलने वाले दोनों, माने जो बोलने वाला और सुनने वाला, वो दोनों ही बहुत परमोच्च स्तर के थे। जैसे अर्जुन खुद एक महान योगी था, उसको इसलिए अर्जुन को बहुत अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है भगवद गीता में। और उनका महान योगी स्तर किससे पता चलता है कि जब अर्जुन विषाद योग में जब वो पढ़ते हैं कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने कौन कौन से कारण दिए, कोई बता सकता है कि युद्ध न करने के अर्जुन के कारण क्या है? समझो हमें किसी ने पूछा कि अभी समझो इधर कुछ हो गया, हुल्लड़ मच गया और सामने वाला हमारे लोगों को मार रहा है, और किसी ने हमें बोला कि अरे अरे जा जा लड़, तो हम क्या रीजन देंगे? आई एम नॉट क्वालिफाइड, नंबर वन। मन में क्या होगा, अरे एक डंडा बैठ गया तो मेरा क्या होगा, दूसरा मेरा क्या जाता है, तीसरा उससे मुझे क्या फायदा, चौथा और लोग है ना, मैं क्यों चाहिए, और सबसे बड़ा भय कि मेरा मृत्यु हो गया तो क्या। अर्जुन ने इसमें से एक भी रीजन नहीं दिया। अर्जुन ने क्या पहला रीजन दिया, हाँ, कि मेरे रिश्तेदारों को, और रिश्तेदारों में भी उसको ज्यादा रुचि नहीं थी, माने भाइयों के प्रति ज्यादा रुचि नहीं, मेरे गुरु और मेरे पितामह, मेरे कृपाचार्य, मेरे मामा जी शल्य, जो सीनियर कैडर के जो रिश्तेदार थे, कि जिन्होंने इनके खिलाफ कुछ गलती की नहीं थी, उनको मारने से क्या होगा। दूसरा, ठीक है वो भाई है, बिगड़ा हुआ भाई है, फिर भी मेरा ही भाई है। दूसरा लेवल आया सब भाइयों के प्रति। तीसरा लेवल आया समाज के प्रति, कि अरे हमारा झगड़ा है और इसके लिए लाखों लोग मर रहे हैं, और जब ये लाखों लोग मरेंगे तो समाज का अधः पतन होगा, कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था गायब हो जाएगी, और फिर सब अभी का अमेरिका भारत हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये पहला कारण, और दूसरा, दो कारण मैंने बताया, एक तो समाज के लिए कुल परंपरा था, और तीसरा था कि वो पागल है लेकिन हमें तो ज्ञान है, तो वो गलती करे इसे हम भी गलती करें, ऐसा कैसे चलेगा। तो जो ज्ञानी है उसको मालूम है कि ये पाप कर्म है, तो वो पाप से डरना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। चौथा था कुल परंपरा का नाश हो गया, पाप का भय हो गया बाद में। हाँ, अर्जुन कहता था कि मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं अभी जैसा हूं वैसा हूं, तो कुछ मोटिव नहीं है मुझे युद्ध करने के पीछे। और पांचवा था कि मैं अभी कंफ्यूज हो गया, अभी मुझे योग्य अयोग्य कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें एक भी स्वार्थ की भावना नहीं है। अर्जुन जीत जाता तो भी उसका भाई ही राज्य करने वाला था, अर्जुन हार जाता तो भी उसका भाई ही राज्य करने वाला था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन जीत गया तो उसको राजा बनाने वाले थे। तो फिर भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था। तो ये पांच उन्होंने दिए हुए कारणों से ही पता चलता है कि हम कितने अर्जुन ही लाया था भगवान से भगवद गीता सुनने के लिए, तो इसीलिए उसको योगीश्वर कहते हैं, उसको गुड़ाकेश भी कहते हैं। गुड़ाकेश का मतलब क्या है, जिसने निद्रा में विजय प्राप्त किया हुआ है। अर्जुन ऐसे बहुत दिनों तक बिना सोए रह सकता था। द्रोणाचार्य ने बता के रखा था कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में खाना नहीं देने का, मालूम है क्यों, मैंने बताया शायद एक बार। और एक बार ऐसे ही भीम और अर्जुन खाना खाने बैठ जाते हैं और दिया बुझ जाता है। पहुंचने के तो एम से भी नहीं थी नहीं तो रोज अंधेरे में ही खा लेते, तो दिया बुझ जाता है। तो अर्जुन कहता है दो तीन मिनट के बाद, मझले भैया आपको कुछ समझ में आया क्या? भीम कहता हाँ लड्डू बहुत अच्छे हुए। नहीं नहीं वो बात नहीं, खीर भी अच्छी हुई। अरे वो भी नहीं, फिर क्या? अंधेरे में भी मेरा हाथ मेरे मुंह में ही जा रहा है, फिर कहाँ जाएगा? भीम ने कहा शांति से मुझे खाने दे, तुझे क्या एक्सपेरिमेंट करना है कर, लेकिन मुझे तो खाने दे। तो तब उनको पता चला कि अरे मेरे हाथ को मेरे मुंह में जाने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर मेरे तीर को उसके निशाने में जाने के लिए देखने की क्यों आवश्यकता है? तो तब से जाके अर्जुन रात में जग के वो अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस चालू की, और इसलिए उनका नाम हुआ बुढ़ाकेश। दूसरा वो गुरु नंदन थे, वो पृथापुत्र थे, वो धनंजय थे, वो इसी देह में स्वर्ग में जाके आए। तो इतने सब अर्जुन योगी थे इसलिए ये संवाद परमोच्च है। और दूसरे भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कहते हैं? योगेश्वर। तो वो उन्होंने सब योग आत्मसात करके उन्होंने ही वो दिए हैं एक्चुअली। तो इसीलिए ये संवाद एक भौतिक संवाद नहीं है, और वो कभी भी खोलो आज भी खोलो तो भी केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान नहीं देती भगवत गीता। तो डे टू डे हमारे जीवन में जो भी सवाल आते हैं उसका भी ज्ञान उसमें है, उसमें भी हमें परामर्श मिल जाता है। तो ये अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। और ये संवाद क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने अर्जुन के क्वालिफिकेशंस बताया कि हे अर्जुन तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं। भक्तोसी में सखा चेति, ऐसे भगवान कहते हैं। और ये ज्ञान जो सुनता है तो उसकी क्या गति होती है? वो संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर मतिर्मा। तो जो ये ज्ञान को स्वीकार करता है और अपने जीवन में उतारना चाहता है तो उसमें उसको योगेश्वर कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, वो अर्जुन जैसा कार्यरत हो जाता है, माने हो जाना चाहिए जिसको भगवद गीता एक्चुअली समझ में आई है, और फिर उसको फिर उसकी नीति अच्छी हो जाती है और उसको बाद में यश संपाद यश प्राप्ति होती है। तो भगवद गीता ये प्रस्थान त्रयी इसमें से एक किताब है। प्रस्थान त्रयी इसका मतलब है वेदों में वेद शास्त्र के बारे में किसी को कुछ भी विचार लिखने हैं तो तीन चीजों पे उसको उनको कमेंट्री करना जरूरी रहता था। तो एक था उपनिषद, दूसरा था ब्रह्म सूत्र जिसको हम वेदांत सूत्र कहते हैं, और तीसरी है भगवद गीता। इसलिए भी वैष्णव तत्वज्ञों में से बलदेव विद्याभूषण जो है उन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी। वैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी, उपनिषदों पे लिखी, और भगवद गीता तो उन्होंने लिखी, तो वो संप्रदाय ऑथराइज कहा जाता है। तो उसमें से एक भगवद गीता है। भगवद गीता श्रुति है या स्मृति है? श्रुति और स्मृति में फर्क मालूम है? श्रुति वेदों को और उपनिषदों को कहा जाता है जो डायरेक्ट भगवान ने बताया है ऐसे कहते हैं और आदमी ने सुने, इसलिए वो श्रुति है। और स्मृति जिसमें किसी आदमी ने उनके याद से कुछ लिख के रखा है इसको स्मृति कहते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? इतिहास आता है, जिसमें रामायण महाभारत आता है, उसमें 18 पुराण आते हैं। तो ये श्रुति है या स्मृति है? ये तो महाभारत में आता है तो स्मृति है, लेकिन भगवान ने कुछ ने बताया तो ये श्रुति है। तो ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, गीता अद्वितीय है, गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। कोई योग शास्त्र के ग्रंथ है जैसे योग वशिष्ठ हुआ, कुछ ब्रह्म विज्ञान के ग्रंथ है, कुछ है जिसमें ड्रामेटाइजेशन है जैसे महाभारत है रामायण है, लेकिन सब कुछ जिसमें है ऐसी एकमेव गीता है। और इसलिए गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिस्मृता। इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ एक भगवत गीता हमने जान ली या जानने का प्रयास किया, हमारे जीवन में उसमें उतारने का प्रयास किया, तो बाकी सब शास्त्रों की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान शिव जी कह रहे हैं, तो मुझे शंका के नजर से देखेंगे, अरे क्या है इधर तो सब लोग सुबह भागवत पढ़ रहे हैं और शाम को कह रहे हैं कि दूसरे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि स्वयं भगवान ने, भगवान की यह वाणी है और उसमें सारा जो सार है वेदों का बाकी उपनिषदों का वो उसमें समाया है। ये जो प्रस्थान त्रयी है मैंने जो बोला कि उसको प्रमाण भी माना गया है हमारे वैदिक जीवन में, या हमारे हिंदू धर्म का जो कुछ भी हम वर्तन करते हैं तो उसका प्रमाण इसको माना गया है। तो बहुत सारे जो उपनिषद है तो वो केवल विचार है, जैसे हमने ईशोपनिषद हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें बहुत सारा गहन विचार दिया गया है, अनेक उपनिषद और ज्यादा सोच के बनाए हैं, लेकिन व्यवहार के लिए जो सिद्धांत है वो गीता में बहुत ज्यादा सुस्पष्ट दिए गए हैं कि ऐसे करो ऐसे मत करो, ये करना अच्छा है, ये तेरे मन का स्वधर्म है, ये तेरे शरीर का स्वधर्म है, ये तेरे आत्मा का स्वधर्म है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि तेरा जो आत्मा है उसका स्वधर्म क्या है, कि तू शाश्वत है और तुझे शाश्वतता के प्रति ही तेरा नाश नहीं होने वाला, तू परमात्मा की सेवा कर। और शरीर का स्वधर्म क्या बताया, कि तू जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, तू गृहस्थ आश्रम में है और क्षत्रिय वर्ण में है, तो वो तो एक्चुअली अर्जुन का शरीर है ना, अर्जुन का आत्मा थोड़ी गृहस्थ है, तो वो शरीर के लिए जो कर्तव्य है वो तू कर। तो ये जो ज्ञान है, मन को निग्रह कैसा करना चाहिए, कर्तव्य कैसे व्यक्त करने चाहिए, जैसे प्रथम अध्याय में भी हिंसा क्यों जरूरी है ये भगवान ने अर्जुन को बताया द्वितीय अध्याय में कि तुम्हें मारना चाहिए, तो हमें ऐसे लगता है कि मारना चाहिए कि नहीं। तो एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, एक कथा से मैं बताना चाहता हूं कि एक गांव था, तो एक गांव में ऐसे एक विषाणु की बाधा हो गई कि सब उनके जो गाय बैल थे भेड़ बकरियां थी वो मरने लगे, और धीरे धीरे वो आदमियों मतलब मानव जाति में भी वो संसर्ग होने लगा और आदमी लोग भी मरने लगे। बहुत सारी दवाई की फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो लास्ट में एकदम पुराने एक वैद्य थे गांव में, तो उनको जाके पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दूसरे प्रकार के विषाणु आपको देता हूं जो आपके देह के अंदर इस विषाणु को खा जाएंगे, तो आपको चलेगा क्या, हिंसा होगी लेकिन आप ठीक हो जाओगे। तो वो विषाणु बाद में शरीर में डाले गए और हर एक के शरीर में युद्ध हो गया, जैसे हमारे शरीर में भी रोज युद्ध होता है, हमारी जो इम्यूनिटी जिसको कहते हैं प्रतिकार शक्ति और बैक्टीरिया लड़ते रहते, बैक्टीरिया जीत गया तो हम बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी जीत गई तो हम स्वस्थ रहते हैं, तो हिंसा कहां नहीं है, लेकिन हिंसा का कारण क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन कह रहा था कि अहिंसा तो परमो धर्म है, लेकिन वो अच्छे रूल से ज्यादा परम धर्म नहीं है। कोई दूसरा राक्षसी वृत्ति का आदमी रूल करने वाला है तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा जरूरी है। तो ये जो तरह का भाव है वो गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। दूसरा, अर्जुन ने जो विषाद किया कि सारी ये जो जो कुटुंब व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी और बाद में आगे समाज व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी, इसका एग्जैक्ट हमारे भारत में एक बार हुआ था। वो था जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो वहां के जो लोग थे ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में, तो उनका जनजीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कनेक्शन नहीं रहा उनके कुटुंब से, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ऐसे हम गीता का डायरेक्ट क्या क्या घटना हुई वो हम देख सकते हैं। और एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत हेवी हो रहा है कीर्तन करें क्या? थोड़ा थोड़ा ही पता है, स्टोरी के टाइम ही सो गए। तो और एक डिफरेंस है, अभी के जमाने में हम जब गीता पढ़ते हैं, और गीता कैसे पढ़नी चाहिए, इसमें आज के जमाने में हम गीता पढ़ते हैं तो गीता को जस्टिफाई करते हैं। जैसे किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बताया गया रहेगा तो हम गीता को जस्टिफाई करते हैं, हाँ वो प्रिंसिपल गीता में भी दिया है। जैसे कि वो किस वो साइंटिस्ट ने निकाला हुआ है वो कुछ तो नया है, बड़ा बहुत अच्छा है, और गीता में भी वो है। लेकिन गीता के प्रमाण पर बाकी सब सिद्ध होना चाहिए, वो गीता का जिसको कहते कि रियल रिस्पेक्ट है। इसलिए हमने कभी भी गीता पढ़ा के किसी बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को या बड़े कंपनी में मैनेजर्स को मन शांति देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो उनका मन शांत होगा तो वो और लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। जब तो खुद विघ्न है तब तो खुद को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मन शांत होगा तो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसलिए उनको पहले गीता समझाओ और बाद में फिर उनका मन शांत करो, ना कि सिर्फ गीता एक टूल दे और एक टूल हाथ में लिया। जैसे कहते कि पहले ही मरकट है और उसमें उसने मद्य पिया है और हाथ में जला हुआ लकड़ी दिया है तो क्या करेगा वो। तो गीता किसको सुनानी चाहिए और किसको नहीं वो भी हमें देखना चाहिए। गीता को हम आध्यात्मिक प्रगति दो मार्ग से कर सकते हैं, एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और दूसरे को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। तो गीता किस मार्ग का चयन करती है? प्रवृत्ति मार्ग का चयन करती है। तो गीता गृहस्थों के लिए है ज्यादातर, क्योंकि हमने अभी तो स्वीकार कर लिया है कि हमें घर गृहस्थी भी करना है। जैसे अर्जुन के लिए हमारी भी एक शादी हुई है, अर्जुन की कितनी मालूम है? अर्जुन की 5 शादी हो गई थी, तो वो भी शादीशुदा है, उनके भी 5 बच्चे हैं। तो फिर अर्जुन अप्लाई कर सकता है भगवद गीता, तो हम भी करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग के ग्रंथ क्या है? जो उपनिषद है वो निवृत्ति मार्ग के ग्रंथ है कि जहां चर्चा होती है। श्रीमद् भागवतम भी 50-50 है, माने कुछ प्रवृत्ति मार्ग के भक्त है उसमें, कुछ निवृत्ति मार्ग के है। तो एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग जो है जिसमें गंतव्य तो एक ही है कि मोक्ष चाहिए हमें, इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहिए और बाद में भगवान की भक्ति चाहिए। तो फर्क क्या है उसमें? तो निवृत्ति मार्ग में क्या है कि निवृत्ति मार्ग में लोग उनकी उपाधियों का और उनके कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। जैसे कोई ब्रह्मचारी हुआ तो उन्होंने जो पहले जो कुछ उपाधि प्राप्त की है तो उसका वो त्याग कर देंगे, उनके फिर कर्तव्यों का भी वो त्याग कर देते हैं और एक संन्यस्त जीवन की शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी परंपरा हमारे चतुर संप्रदाय अखाड़ा है और बहुत सारे ग्रंथ है। भगवत गीता जो है वो जो प्रवृत्ति मार्ग में है, जैसे गृहस्थ लोग है तो उनके लिए बताई गई है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ने का बढ़ने के लिए भगवत गीता ने क्या बताया है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार कर्तव्य समझ के कर्म करो, और वो कर्म करते करते जब तुम मेरा सतत स्मरण करोगे, सतत चिंतन करोगे, तो शुद्धिकरण होके आप मेरे धाम में वापस आ सकते हो। लेकिन भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम तुम्हारे कर्तव्य छोड़ दो और सिर्फ मेरा चिंतन करो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का प्रदर्शन, क्योंकि अर्जुन का सवाल सही था ना, वो तो सन्यासी बनने जा रहा था, तो निवृत्ति स्वीकार कर रहा था, लेकिन भगवान ने कहा कि ये गलत निवृत्ति है, ये सही निवृत्ति नहीं है। कैसे गलत है? कि हमने भगवत गीता नहीं पहचानी, नहीं जानी, तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार होता है, जब तक मेरे शरीर का ख्याल करना है, जब तक मेरे आजू बाजू मेरे आप्त सखियों का ख्याल करना है, तब तक मैं प्रवृत्ति मार्ग में रहता हूं। मैं खुद कष्ट से पैसे कमाता हूं, मैं उनका सब अच्छा देखता हूं, लेकिन जब एक्सीडेंट कहीं दिखता है तो मैं निवृत्ति मार्ग हो जाता हूं। देख लेंगे ना वो, है ना, लोग भगवान देख लेंगे ना, उसका कुछ तो कर्म का गड़बड़ हुआ इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। फिर हमारा कर्तव्य नहीं आता कि मैं इस समाज का एक घटक हूं तो मैं उसको उठाऊं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आधा अधूरा भगवत गीता समझ के उसमें से गड़बड़ करने लगते हैं कि जब मेरे शरीर की चिंताओं का बात है तो मैं प्रवृत्ति मार्गी हूं, और जब दूसरे के लिए काम करना है तो फिर मैं निवृत्ति मार्गी। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे स्थान भी नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरा भक्ति अकेले में अच्छा चल रहा है। तो भगवान ऐसे जो लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। भगवान कहते हैं आपको फिर निवृत्ति मार्ग स्वीकारना है तो आप ब्रह्मचारी हो जाओ, वानप्रस्थी हो जाओ, लेकिन आपको गृहस्थ बन गए तो आपको गृहस्थ के कर्तव्य, माँ को माँ के कर्तव्य, पुत्र को पुत्र के कर्तव्य, सास को सास के कर्तव्य, ससुर को ससुर के कर्तव्य, सबको अपने अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। ये नहीं हुआ तो फिर आज जैसे समाज में स्थिति है वो स्थिति हो जाएगी। तो अंत में सबसे लास्ट में इस भगवद गीता का बहुत अच्छा वर्णन अपने जो गीता महात्म्य के सातवें श्लोक में भगवान शिव जी कहते हैं, वो कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, मतलब केवल एक ही शास्त्र जीवन में आपने उतारना चाहा तो कौन सा उतारना चाहिए, तो देवकी पुत्र गीतम मैंने भगवद गीता। कुछ ऐसा रहता ना कि नहीं मैं पूरे नहीं पढ़ सकता, मुझे सिर्फ कुछ तो एक दो, तो क्या देना चाहिए, भगवत एको देवो देवकी पुत्र एव, फिर एक ही परमेश्वर की आपको आराधना करनी है, भक्ति करनी है, तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और उनकी आराधना कैसी करनी चाहिए वो भी बताए, एको मंत्रो तस्य नामानियानि, केवल एक ही मंत्र है वो मैंने उनके नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्मा भी एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है हमारे जिंदगी में कि वो उस पर उन परमेश्वर की सेवा। लेकिन इसमें ट्रिक है, उन परमेश्वर की सेवा यानी क्या, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। वो भगवत गीता में क्लियर कट बताया है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मां अनुस्मर युद्ध, आपको युद्ध छोड़ के भाग के आने की जरूरत नहीं है, युद्ध करते करते आपका, जो हमने शुरुआत भी इसी से की थी कि युद्ध चल रहा है, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। अर्जुन को बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कौन सा श्लोक है, श्लोक क्रमांक 66, 66वें श्लोक में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, जो कुछ भी तुम्हारे मनोधर्म शरीर धर्म आत्मधर्म जो कुछ भी है वो छोड़ दो, मां एकम शरण ब्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पापों को ले लूंगा और उसे मुक्त कर दूंगा, वो पापों से आपको मुक्त कर, मोक्ष इच्छामि, मां सूचक केवल मेरी सेवा करो। ये अर्जुन ने सुना, अर्जुन कहा हाँ बराबर है आपने बताया, आपने जो बताया मैं वही करूंगा, और क्या किया, युद्ध किया। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, युद्ध से भागना चाहिए। हमें क्या लगता है कि मैं भक्त हूं तो मेरे लिए कंसेशन है, मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान ने मेरा युद्ध कम कर देना चाहिए। मुझे तो गारंटी है कि 11वें अध्याय में जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया तब तो भगवान जब अर्जुन कहते हैं कि हे विश्वरूप आपके सारे रूपों में मैं कौरवों के और पांडवों के अग्रणी योद्धा मुंह में जा रहे ऐसे देख रहा हूं, और आपके दांतों के तले वो कुचल जा रहे वो देख रहा हूं, क्या उन्होंने उसमें अपने पुत्र को नहीं देखा होगा, वो तो अग्रणी योद्धा है, एक दिन तो सारा उनका ही वर्णन आया है, तो नहीं देख रहा होगा, देखा होगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर बोला सिर्फ दुर्योधन के तरफ के जा रहे ऐसे नहीं बोला, हमारे और दुर्योधन के अग्रणी योद्धा मुंह में जा रहे ऐसे देखा होगा। तो वैसा हमारा भी हो सकता है, अर्जुन का हुआ, भगवान के सामने हुआ, तो फिर भी लेकिन अर्जुन ने कहा मां अनुस्वर युद्ध च, जब हमें यह पता चलता है तो सबसे पहले डेफिनेशन देना पड़ता है कि सबसे पहले डिस्क्राइब करना पड़ता है कि मेरा युद्ध क्या है, मेरा युद्ध अंदर चल रहा है बाहर चल रहा है किससे चल रहा है, मेरे अहंकार से चल रहा है या दूसरे के अहंकार से चल रहा है। तो जब ये हम इस तरह से जब हम विचार करते करते जब भगवद गीता पढ़ना चालू करते हैं तो भगवद गीता जो यहां बताया है कि केवल भगवद गीता पढ़ के भी हमारे भौतिक जीवन में भी हमें परम लाभ हो सकता है, हालांकि परम लाभ माने ग्रीड नहीं माने लोभ नहीं, लेकिन भौतिक जीवन की सिद्धता हो सकती है और आध्यात्मिक परम गति भी मिल सकती है। तो गीता समझने की सबसे पहली मेथड क्या है, सबसे पहले मैं बोल दूं ऐसे ये मेथड गलत है, लेकिन अभी यही अवेलेबल है इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन गीता समझने की सबसे पहली जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है हमें कुछ सवाल आने चाहिए मन में, हमें ये लगना चाहिए कि जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, इससे कुछ अच्छा होने की उम्मीद हमारे इसमें होनी चाहिए, अपेक्षा होनी चाहिए, तो गीता पढ़ने से मजा है। नहीं तो सिर्फ एक बार पढ़ लिया, एक डिग्री ले लिया, पीएचडी मिल गया, गीता गीता के स्थान में मेरे स्थान, तो ऐसे गीता नहीं होगी। तो इसीलिए भगवान ने भी चार लोगों को बोला है कि इनको गीता समझ में आएगी, मैं जो ध्यान दे रहा हूं वो इनको समझ में आया आ जाएगा। वो कौन चार है लोग, चतुर्विदा भजन्ते मां, जनाना नहीं सुकृतो और जना, चतुर्विदा अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों को सवाल है। अर्थ को है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, अर्जुन को जो सवाल था मैं क्या करूं, बहुत सिंपल सवाल था ना उनको, ऐसा सवाल नहीं था ना कि मैं ब्रह्मों में लीन हो जाऊंगा या मैं आपकी भक्ति करूंगा सारूढ़ मुक्ति मिलेगी या साहिब्य मुक्ति मिलेगी, ऐसा सवाल तो नहीं था। भगवदगीता वो सवालों के लिए है ही नहीं, भगवदगीता सिंपल सवालों के लिए, मैं ये जॉब करूं या वो जॉब करूं, मेरे बच्चे को ये स्कूल में डालो या वो स्कूल में डालो, इससे शादी करूं या उससे शादी करूं, आज ये खाऊं या वो खाऊं, इतने सिंपल सवालों के लिए भगवदगीता है। क्या खाना ये भी भगवदगीता में दिया है, 17वें अध्याय में रजोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या है, क्रैकजैक क्या है, कुरकुरे क्या है, सब भगवदगीता में है। घर का खाना कैसा अच्छा है, कितने मिनट के बाद अन्न खराब हो जाता है, वो भी भगवद गीता में। दान कैसे करना चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो भी भगवद गीता में बहुत सिंपल पद। हम क्या करते हैं कि हमने भगवद गीता को क्या किया है, भगवद गीता को आचार ग्रंथ माना ही नहीं है, वो सिर्फ विचार ग्रंथ। और केवल भौतिकता में मैं कैसे भी जीऊं, आध्यात्मिक मार्ग की एक किताब ऐसे उसको समझ में रखा। इसलिए भगवद गीता का जितना हमें फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। भगवद गीता हमारे डे टू डे जीवन में हम जब खोल के पढ़ेंगे, कुछ भी सवाल आए भगवद गीता पढ़ना है, तो हमें भगवद गीता के श्लोकों में से अर्थ निकलते निकलते समझेंगे कि अरे ये तो भगवद गीता में है, ये तो भगवद गीता में है। और तब सही में हम भगवद गीता को उनका जो स्थान है, उनका जो रिस्पेक्ट है, वो हम दे पाएंगे। तो ये सवाल उठने चाहिए हमारे मन में, सत्य के लिए खोज करनी चाहिए, ऐसा हमें लगना चाहिए। और बाद में जब ऐसी कुछ भावना आती है, फिर तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। जब ऐसे सवाल है कि हम तत्वों के लोग गुरुओं के पास जाते हैं कि जिन्होंने खुद ने भगवत गीता समझी है, उसके तरह आचरण वो कर रहे हैं, वो आचार्य है, गुरु परंपरा में स्थित है, तो वो उनकी सेवा करके उन्हें जब हम सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो वो आपको भगवत गीता के आधार पर जवाब देंगे और हमारा जीवन जो है वो आध्यात्मिक प्रगति की ओर और भौतिक प्रगति की ओर। भगवत गीता में कहीं भी आदमी को बताया नहीं गया है कि भौतिक प्रगति मत करो, लेकिन भौतिक प्रगति यानी क्या है उसकी व्याख्या नहीं गई है। तो हम उसके ओर अग्रसर होंगे और हमारा जीवन, मानव जीवन सफल बनाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की। आप में से कितने लोगों को यह प्रवचन बहुत बोर हो गया, वो हाथ नीचे रखे। धन्यवाद। हाथ उठाने में तकलीफ होती है ना, इसलिए फिर जाने तो बोर तो हुआ है और हाथ क्यों उठा हुआ, ऐसा हो रहा है इसलिए मैंने बोला। किसी को कोई सवाल है? हाँ, ते चार आहेत ना, कोणाला सांगू नये? त्याचं तर मोठं प्रवचन आहे 2 तासाचं। श्लोकात सांगू का फक्त? सांगतो। नाही, 7th चॅप्टर। सातच बघतोय तर का दिसत नाही आहे? हा जो नाही आते। ये 7.7.15 श्लोक है जिसमें प्रभुपाद ने विस्तार से 3 पेजेस का प्रबोध लिखा है, मैंने तात्पर्य लिखा है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। दुष्कृति न, कि वो दुष्कृति है, उसको बुरा कुछ करने में आनंद आ रहा है। दुष्कृति न मूढ़ा, मूढ़ा माने मूर्ख है, उसमें से भौतिक, उसको भौतिकता के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं, मेरा, मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना मिला है और मैं इतना करके इतना मुझे मिलेगा, यही मैं, वो है मूढ़। दूसरा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नराधम कैटेगरी के है ना, वो सोशल सर्विस में लगे रहते हैं लेकिन उसको उनको टारगेट नहीं रहता कि कहाँ वो करना है। जैसे पॉलिटिशियंस है, दिखाने के लिए तो कर रहे हैं लेकिन बाद में विकेंद्रित उनका रहने के कारण फिर वो स्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है बाद में। माया अपरुत ज्ञान, इनको ज्ञान तो रहता है जैसे कवि है शास्त्रज्ञ है लेकिन वो भगवान छोड़ के बाकी सब प्रकृति के साथ खेलते हैं तो वो भक्ति नहीं कर पाते। और आसुरम भाव आश्रिता, जो आसुर भाव में आश्रित है जिनको सब कुछ मालूम है फिर भी रिवेरियस, भगवान क्यों मैं क्यों नहीं, वो क्यों मैं क्यों नहीं, ये भाव में रहते उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसका डिटेल है, ये हरेक हरेक का आधा आधा पन्ना दिया है प्रभुपाद ने और बहुत ग्राफिकल दिया हुआ है। और कोई सवाल? पांच है मुझे मालूम है। एक तो त्रिपुरा के जब अर्जुन और कृष्ण एक बार खांडवप्रस्थ उन्होंने जलाकर राग किया तो बाद में त्रिपुरा में जाते हैं तो वहां उनके राजा की एक पुत्री को ब्याह कर लाते हैं। तो ऐसे एक्चुअली पांच है, अभी मैं अगले प्रवचन में बताऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि भगवद गीता में ये सवाल आएगा इसलिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। भगवद गीता में तो किसी पत्नी का उल्लेख नहीं किया है, भगवद गीता में तो अपने पत्नी का भी उल्लेख मत करो ऐसे बोला है या पति का भी। आपको आपके जीवन में भगवद गीता उतारने में कोई सवाल रहेगा तो पूछो, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा आपको जरूर। मैंने पढ़ा है पांच पत्नियां थी, शिवाजी महाराज को कितनी पत्नियां थी मैंने 10 सुना था। मे बी बट दिस इज पॉलिटिकल मैरिजेस। और किसी को कोई सवाल? सबको भगवद गीता समझ में आया? अभी तक पढ़ना चालू ही नहीं किया तो। लेकिन मेरा सबसे पूरा हृदय से नम्रता से एक विनती है कि मैंने एक बार भगवद गीता पढ़ी थी या दो बार पढ़ी थी, मुझे पूरे 700 श्लोक याद है, ऐसा भाव न रखते हुए भगवद गीता को वापिस एक बार पढ़ो। ये भाव से पढ़ो कि भगवद गीता को सिर्फ प्रमाण नहीं करना कि हाँ मैं यहाँ ऐसे बर्ताव किया ना, वो भगवद गीता के आधार पर किया, पहले बर्ताव कर लिया बाद में भगवद गीता से स्टैंपिंग कर रहे हो ये बराबर है, ऐसा न करते हुए वो खुले हृदय से भगवद गीता पढ़ो और डे टू डे लाइफ में उसमें आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। जैसे तीसरे अध्याय में बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो यज्ञ सिस्टम बनाई कि मैंने देवी देवताओं को निर्मित किया तो यज्ञ से वो संतुष्ट हो जाएंगे और वो आपको धन ध्यान देंगे, दिस इज नथिंग बट अ कोऑपरेशन। हम मानव, एक भी मानव विदाउट कोऑपरेशन सुखी नहीं हो सकता। हम, मैं अकेला सुखी हो जाऊंगा ये बहुत बड़ी भ्रांत है, इसलिए सब लोग दुखी है। हमने सिर्फ ये तय करना चाहिए कि मैं दूसरों को सुख दूंगा। एक बार ये तय किया सभी लोगों ने तो सब n माइनस वन टाइम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वन तो मैं हूं बाकी तो n पूरा मानव समाज है, तो सब लोग दूसरे को सुखी करने जाएंगे तो अपने आप सब लोग बहुत ज्यादा सुखी होंगे, लेकिन मैं ही सुखी होऊंगा कहेंगे तो झगड़ा चालू हो जाएगा। दिस इज गिवन इन भगवद गीता 3rd chapter। तो ऐसा बहुत कुछ भगवद गीता में है जो मैं भी सीख रहा हूं। ये प्रवचन बेसिकली मेरे लिए ही था कि मुझे भगवद गीता और ज्यादा समझ में आए और समझने का मैं प्रयास करूं। तो कार्तिक का कथा का मूड मैंने डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपकी माफी चाहता हूं और समझता हूं कि आपको कोई सवाल ना रहे हो तो वापिस प्रभुपाद का स्मरण करके, गुरु परंपरा का स्मरण करके, व्यासदेव जी का स्मरण करके मैं प्रवचन खत्म हुआ ये घोषणा करता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे।
श्रीमान संकीर्तन रस प्रभु की जय।